ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करते महाकुंभ 2025 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मुग्धा सिन्हा, भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ अमित प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
महाकुंभ 2025 की दिव्य शुरुआत 13 जनवरी यानी अगले सप्ताह से ही होने जा रही है। ये पवित्र स्नान के साथ शुरू होगा और ये आध्यात्मिक उत्सव 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के साथ संपन्न होगा। और हर 12 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ मेला केवल एक विशाल जनसमूह नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी है और एक ऐसा समागम है जो विश्व की एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और आज हम कार्यक्रम में यही चर्चा करने वाले हैं कि इस बार का महाकुंभ 2025 का ये जो समागम होने जा रहा है प्रयागराज में, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह के प्रबंध हैं और इस महाकुंभ का महत्व क्या है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ परिचर्चा में विशेषज्ञ शामिल होने जा रहे हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे पर्यटन मंत्रालय में महानिदेशक मुग्धा सिन्हा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं। आपका भी स्वागत है।
धन्यवाद।
अमित प्रकाश जी जो संस्कृति मामलों के विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के गीत का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ उपस्थित थी। आइए महाकुंभ 2025 के आकाशवाणी के इस गीत का एक अंश सुनते हैं।
जय महाकुंभ पग पग जयकारा, महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ।
जय महाकुंभ पग पग जयकारा, महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ।
इस सत्य सनातन धारा का सौभाग्य हमारा महाकुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ।
जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ।
तो चर्चा की शुरुआत मुग्धा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। उम्मीद है कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु या पर्यटक या लोग इस समागम में शामिल होने के लिए आएंगे। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोगों के आने की अपेक्षा है बड़ी संख्या में। ऐसे में पर्यटन मंत्रालय महाकुंभ 2025 के आयोजन को किस तरह से देख रहा है और क्या पर्यटन की दृष्टि से संदेश लेकर ये शुरू होने जा रहा है?
इस कुंभ में हम लोग जो हैं पर्यटन मंत्रालय की तरफ से, हम लोग ने तैयारियां तो बहुत पहले शुरू कर दी थी। हमारा फोकस इसमें रहेगा, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि 45 करोड़ श्रद्धालु इसमें आते हैं, हम इसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बिकॉज ये सेलेस्ट्रल कैलेंडर के अनुसार ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कोई आग्रह पाती नहीं जारी होती। जो आकाश में जैसा सितारों का समागम होता है, उसी तरह से जमीन में भी जो है लोगों का, श्रद्धालुओं का समागम होता है। ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कंटिन्यूस और सबसे प्राचीन जो है समागम है। और इसका कोतूहल का भी ये विषय होता है, श्रद्धा का विषय तो होता ही है, कोतूहल का भी विषय होता है, क्योंकि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय का जो फोकस है वो विदेशी पर्यटक भी है। तो हमने इस बार अपनी सारी तैयारियां जो हैं उनको इसमें, कैसे वो अग्रसर हो सकें, कैसे वो आ सकें, हमने अपने जो भारत के मिशन है बाहर उनके साथ, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कल से प्रवासी भारतीय दिवस भी शुरू हो रहा है और वहां पर बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा का समागम होगा, कैसे जो यहाँ पर भुवनेश्वर में लोग आए उनको हम कैसे महाकुंभ में भेज सकते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। आप एक्सपैट्स हो, भारत में रहते हो, यहाँ आना चाहते हो, यहाँ के जो एम्बेसडर्स हैं विभिन्न कंट्रीज से जो यहाँ रहते हैं, उनका पूरा स्टाफ, उनके पूरे परिवारजन, अगर आप आना चाहते हो, रिसर्चर्स हैं, फॉरेन रिसर्चर्स हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ट्रैवल राइटर्स हैं और आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन सब को वहां पर हम लोग ने अपना एक खुद का पर्यटन मंत्रालय का एक कैंप एस्टेब्लिश किया है। हमारी खुद की जेटी होगी, बोट होगी और हम लोग ने खुद अपने उन्होंने जो है वॉलंटियर्स लगाए हैं, टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स वहां पर लगाए हैं, जो उनका पूरा इस समागम में घूमने का जो भी उनका वो रहेगा उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। ITDC ने टेंट लगाए हैं, हम यूपी सरकार से, हम मेला अधिकारी से, यूपी पुलिस से, मंत्रालय जो हमारा कल्चर मंत्रालय है उन सब से कोलैबोरेट कर रहे हैं और सबके साथ जो होल ऑफ कंट्री अप्रोच और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है हम लोगों ने हेल्पलाइन चालू करी है, कॉल सेंटर है पूरा 7 UN लैंग्वेजेस में और भारत की सभी लैंग्वेजेस में आपको सब प्रकार की जानकारी, आप अगर कुंभ में आए हैं तो सुबह क्या देख सकते हैं, दोपहर में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, शाम में रात्रि में कौन से कल्चरल प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी। 1363 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप कॉल करें, जिस भी भाषा में आपको ये जानकारी चाहिए होगी आपको ये जानकारी मिलेगी। कल प्रवासी भारतीय दिवस पे हम अपना जो है पूरा टूर आइटनरीज का प्रोग्राम, टूर गाइड जिसे हम कह रहे हैं महाकुंभ की, उसको हम लॉन्च करेंगे, अनवेल होगी वो। उसके बाद कहां आप अकोमोडेशन पा सकते हैं, किस तरह से आप ITDC के टेंट्स बुक कर सकते हैं, किस तरह से आप IRCTC के टेंट बुक कर सकते हैं, किस प्रकार से आप यूपी सरकार के टेंट बुक कर सकते हैं, क्या रेट हैं, कौन टूर ऑपरेटर्स हैं, किस तरह से अगर आप प्रयागराज तक आ ही गए हैं तो कैसे आप चित्रकूट जा सकते हैं, वाराणसी जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं, कौशाम्बी जा सकते हैं, क्या क्या ढूंढ सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं। प्लस हमने 50 डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स पूरे देश भर से ऐसे लगाए हैं वहां पर, जो हर हफ्ते 2 या 3 लोग उसमें से रहेंगे, जो आपका लोकल एक्सपीरियंस ऑफ प्रयागराज, लोकल एक्सपीरियंस ऑफ महाकुंभ, प्लस आपको देखो अपना देश, जो हमारा एक बहुत बड़ा क्लैरियन कॉल हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि भाई अपना देश तो देखो, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे हिडन जेम्स हैं, अनदेखी चीजें हैं अतुल्य भारत में, तो उस अतुल्य भारत में आप वो अनदेखी चीजों को भी तो देखिए। तो हमारे पास 45 करोड़ लोग हैं, लगभग 10 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने वॉलंटियर्स और सर्वे के माध्यम से कि हम देखो अपना देश को पॉपुलर करें और लोगों से जानकारी प्राप्त करें कि उन्होंने गत एक साल में क्या भारत में घूमा है, आगे उनकी क्या आकांक्षा है घूमने की, और उनका सबसे पॉपुलर और फेवरेट अट्रैक्शन या डेस्टिनेशन हिंदुस्तान में भारत में क्या है।
बिल्कुल, और जो समृद्ध आस्था और अध्यात्म है उसके साथ साथ हमारा जो समृद्ध पर्यटन है वो भी हाईलाइट होगा महाकुंभ 2025 के जरिए, जिसको लेकर आपका मंत्रालय बहुत सारी पहल के माध्यम से इस महाकुंभ में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है, जिसके बारे में हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। मैं रवि पराशर जी को जोड़ना चाहूंगा। रवि जी, हम सभी जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति और आस्था का पर्व है जो 12 साल में एक बार आता है, बारी बारी से जो आयोजित होता है गंगा के किनारे हरिद्वार में, और इसी तरह से क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, गोदावरी के किनारे नासिक में, और गंगा यमुना और जो सरस्वती है उसका त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। तो इस बार का ये त्रिवेणी संगम पर जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 2025 का है, इसको आप अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं, कैसे इसका बहुत बड़ा महत्व है और जिस तरह से आयोजित इस बार किया जा रहा है, बहुत सी देश भर के लोगों में चर्चा है, उत्साह है, उसको आप कैसे देखते हैं?
कुंभ भारतीयता और सनातन की विराट, विभ्रात और जागृत जीवंत मूर्त रूप हुआ करता है, हम सब जानते हैं। यहाँ आकर करोड़ों श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौराणिक मान्यता का भी उल्लेख कर देना चाहिए। पौराणिक मान्यता ये है कि जब करोड़ों वर्ष पहले देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उसके लिए दानवों ने भी देवताओं से युद्ध शुरू किया, तो इंद्र के पुत्र जयंत उस घट को, अमृत कलश को देवलोक ले जाने के लिए वायुमार्ग से निकले थे। और उस समय जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उस दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदे पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी और वो जो 12 दिन कहे जाते हैं वो देवताओं का जो युद्ध चला था वो मनुष्यों के लिए 1 वर्ष के समान होता है, इसलिए हर 12 वर्ष में कुंभ की परिकल्पना की गई। और पहला कुंभ का आयोजन कब हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन सारे करीब करीब जो महत्वपूर्ण सनातन ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कुंभ के आयोजन का विशेष महत्व है। और ये आयोजन जो कुंभ के हैं ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व इनका होता है, केवल आध्यात्मिक नहीं है, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी होता है। आम लोगों के साथ ही यहाँ पर हजारों लाखों साधु संत, ऋषि मुनि और आध्यात्मिक शक्तियों से प्रभावी लोग यहाँ जुटते हैं। जैसे मैंने कहा, धर्म ग्रंथों में हर कुंभ के महत्व का बहुत विस्तार से वर्णन है।
अमित प्रकाश जी, चर्चा में आपको जोड़ते हैं। कई अखाड़े जिसमें शिविरों में साधु संत और आध्यात्मिक जो क्षेत्र से संबंध रखने वाले जो महात्मा हैं वो यहाँ एकत्रित होते हैं, जहाँ दर्शन, ध्यान, ज्ञान, इन सभी की चर्चा होती है, एक माहौल भी इन दिनों हम देख रहे हैं, आप तो वहाँ गए भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या नजर आया इस बार के महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत में, और जिस तरह से वहाँ का माहौल है, और खास तौर पर जैसे लोग वहां पहुंचते हैं जो उन संतों की अखाड़ों की जीवन शैली को देखते हैं, करीब से महसूस करते हैं, उनके भी अनुभव के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
सबसे पहले तो शुरुआत में करना चाहूंगा कि एक पुस्तक है कुंभ गाथा, त्रिनाथ मिश्र जी आईपीएस अधिकारी रहे और जब वहाँ कुंभ का आयोजन किया गया था तो उस दौरान अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला कुंभ 1954 में हुआ था और सबसे ऐतिहासिक ये रहा था कि उस वक्त के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वो शामिल हुए थे उस कुंभ में, और पहला महाकुंभ हुआ था 1977 में, ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा इस समागम में, जैसा रवि जी भी बहुत सारी चीजें बता रहे थे, बट नागा साधुओं का वहां जो अखाड़े हैं उन अखाड़ों की जो पेशवाई निकलती है, ये हमेशा से वहां की जो एक गौरव गाथा है उस कुंभ की, उसमें इस पेशवाई का, इन अखाड़ों के निकलने का, नागा साधुओं का। और मैं जब इस बार गया था तो मेरी कई साधुओं से बातचीत हुई और एक जो बड़ी बात निकल के आई उसमें वो ये कि महाकुंभ एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या कर रहे साधु 12 साल में एक बार निकलते हैं प्रयागराज आने के लिए, और वैसे बहुत सारे साधु वहां पहुंचे हैं पूरे देश के अलग अलग कोनों से। और इस वक्त जो मैं देख के आया, 13 से 14 किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है उसमें कल्पवास का क्षेत्र है, उसमें अलग अलग टेंट्स हैं, जैसा मुग्धा जी ने बताया कि जो व्यवस्थाएं इस तरफ पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से की गई हैं, भारत के जिन हिस्सों से लोग यहां पहुंचने वाले हैं उसमें इस बार का कुंभ, मैं आपको कहूंगा कि इस बार का महाकुंभ और उस आयोजन की सबसे विशेष बात यह है कि इस बार के महाकुंभ में दुनिया की जो हम कहें वैश्विक स्तर पे इतना बड़ा महाकुंभ इससे पहले आयोजन नहीं हुआ था। और अंग्रेजी में लोग कह भी रहे थे वर्ल्ड इज आइंग ऑन इंडिया, अभी पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि इस महाकुंभ के आयोजन में जो लोग जुड़ने जा रहे हैं, और कई सारे इस बार महामंडलेश्वर में, आपको बताऊं, अलग अलग देशों की महिलाएं इस बार उस पेशवाई में, कोई जापान की महिला है, कोई अमेरिका की महिला है, कोई फ्रांस की महिला है, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है और वो अखाड़ों में इस बार विराजमान रहेंगे।
तो चलिए सीधे महाकुंभ की अपडेट लेने के लिए हम चलते हैं प्रयागराज। हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़े हैं। प्रवीण, आप हमें अभी ताजा वहां की स्थिति बताएं, क्या कुछ आयोजन को लेकर तैयारी है, क्योंकि अब एक ही हफ्ता रह गया है, उससे भी कम समय रह गया है, और हमने अभी अखाड़ों की चर्चा की, कल्पवास की अभी चर्चा हुई रवि पराशर जी और अमित प्रकाश जी से, तो किस तरह का पूरा आयोजन है, संक्षेप में अगर आप हमें जानकारी दे पाएं।
अगर हम आयोजन की बात करें तो जिस तरह से कुल 26 सेक्टर में पूरे इस महाकुंभ मेले को बसाया, जिसके आयोजन की तैयारी यहाँ पर पूरी हो गई है, और हम कहें जो एक धार्मिक पर्यटन के साथ साथ की जो सांस्कृतिक विरासत है इसको लेकर के भी यहाँ पर फोकस किया गया है, और यहाँ के जो मंदिर को सौंदर्यीकरण किया गया जिससे लोग आए तो यहाँ के जो सांस्कृतिक विरासत है उससे जुड़े, और साथ ही साथ जो मेले में देश के कोने कोने से लोग जो आएंगे उनके लिए यहाँ पे एक टेंट सिटी बनाई गई है अरेल साइड में, साथ ही साथ यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी जो पर्यटक आएंगे उनको भी घुमाने की जो व्यवस्था की गई, मतलब प्रशासन जो यहाँ की जो तैयारियां जो किया है वो उच्च स्तर की गई, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात, खास करके हम स्वच्छता की बात करें, जो पिछला 2019 का जो कुंभ था उसमें स्वच्छता को लेकर के जो पूरे विश्व में एक संदेश गया उसको दोहराने की तैयारी है, और स्वच्छता के लिए जो यहाँ पे मानक बनाए गए हैं, ऐसा मतलब लगता है कि अगर मेले में आप घुस रहे हैं तो प्रवेश कर रहे हैं और जिस द्वार से, तो ऐसा लगता है कि हम किसी यहाँ पे एक स्वर्ग स्थान पर आ गए हैं, एक ऐसा यहाँ पे वातावरण को जो है क्रिएट किया गया है। पूरे संगम क्षेत्र में जो महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग के रूम बनाए गए हैं, कुल मिला के जो सुरक्षित कुंभ, स्वस्थ कुंभ की जो परिकल्पना की गई है, ग्रीन कुंभ की कल्पना की गई है, वो पूरा इसमें देखने को जो मिल रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि खासकर हम पर्यटन की बात करें, जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनके खान पान के लिए फूड कोर्ट भी बनाए गए हैं, डिजिटल महाकुंभ को लेकर के इस बार प्रयोग किया गया है AI जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए, जो है AI के जरिए चाहे भीड़ का आकलन हो, चाहे इसके लिए जो खोया पाया का हो, मतलब एक उच्च स्तरीय तकनीक के माध्यम से पूरे कुंभ को ऑपरेट किया जाएगा जो है, और इसको लेकर के प्रशासन लगभग तैयारी पूरी कर चुका है, अंतिम चरण में है, जो थोड़ा बहुत भी चीजें हैं वो भी एक दो दिन में पूर्ण हो जाएंगे।
जी, जी। बहुत धन्यवाद प्रवीण। मुग्धा सिन्हा जी, आपसे मैं जुड़ता हूँ। एक मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा प्रश्न से पहले कि वर्णन मिलता है हमें एक चीनी यात्री जो 7वीं शताब्दी में आए थे जिनका नाम था वेन स्वांग। उन्होंने प्रयागराज की जो सुंदरता है, समृद्धि है और सांस्कृतिक गहराई है उसका वर्णन किया किया था और उन्होंने त्रिवेणी संगम और जो वहां होने वाला अनुष्ठान है, शायद कुंभ ही जिसको कहा जाता है उनके वर्णन में, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया था। मैं ये प्रश्न यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ कि जैसे जो विदेशी पर्यटक आते हैं, जैसे अभी हमने ह्वेनसांग की चर्चा की, उस वक्त वो आए होंगे तो उन्होंने अपने हिसाब से महाकुंभ को देखा, उसका वर्णन किया, तो पर्यटन मंत्रालय विदेश से आने वाले पर्यटकों को कुंभ के किस आयाम को प्रस्तुत करवाना चाहता है और किस तरह से इसको लेकर पूरी तैयारी है? जैसे कि आपने बताया भी कि महाकुंभ के जरिए आसपास के पर्यटन स्थलों को लेकर भी सहूलियत हो, इस बारे में भी पूरी व्यवस्था की गई है, तो आप इस नजरिए से कैसे महाकुंभ के इस आयोजन को देख रही हैं?
आपको ध्यान होगा अगर मैं कुछ एक वर्ष पहले जाऊं, जब भारत जो है G20 की प्रेसिडेंसी में हमने पार्ट लिया था, तो उसमें हमने टूरिज्म मिनिस्टर्स का जो गोवा रोड मैप डेवलप हुआ था उसमें हमने फोकस किया था कि हम प्रो प्लैनेट है ना, नेचर पॉजिटिव, क्लीन एंड ग्रीन, सस्टेनेबल टूरिज्म, ट्रैवल फॉर लाइफ, रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, इन आयामों को हम जो है आगे बढ़कर इसको पेश करेंगे कि भारत में पर्यटक जब आए तो उसको हाइजीन और उसको सेफ्टी और जिस प्रकार का वो एक्सपेक्ट करता है उसको वो मिले। तो आप जानते हो कि भारत में यहाँ पर इस महाकुंभ के आयोजन में श्रद्धा का विषय है, आपके बहुत सारे 33 इसमें नागा अखाड़े हैं। अगर हम कंटेम्पररी पब्लिक की और ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो आपने इस बार एक किन्नर अखाड़ा लगाया है जो LGBTQ और प्राइड कम्युनिटी को कैप्चर करता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप देखें बहुत सारा योगा, बहुत सारा मेडिटेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं, आपने चाइना में ह्वेनसांग की 7वीं शताब्दी की बात करी, अगर मैं 20वीं शताब्दी की US की बात करूं तो शायद इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में पूरा विश्व समा जाता है। तो उसमें मैं मार्टिन लूथर किंग की बात करूं तो वो कहते हैं कि भारत में मैं कहीं पर भी जाऊं तो मैं एक पर्यटक की दृष्टि से जाता हूं, बट मैं जब भारत में आता हूं तो मैं एक श्रद्धालु या पिलग्रिम की दृष्टि से मैं आता हूं। तो यहां पर कुंभ हमें एक ऐसा मौका देता है कि हम भारत में पर्यटक बन के आए और पिलग्रिमेज वाला जो है उसका लाभ लेते हुए वापस जाएं। आपको पता है कि 2014 से लेके 2024 में दो बड़े बुकेंड डेट्स हो गई हैं आज की तारीख में। 21 जून हमें पता है कि विश्व में योगा दिवस कहलाता है और हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर को जो है विश्व का मेडिटेशन दिवस घोषित किया है। तो मुझे लगता है 6 महीने के अंतराल में ये दो 21 तारीख की डेट्स हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं और उसके बाद इमिजिएटली कुंभ आता है। तो कुंभ में बहुत सारे प्राइवेट लोग जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं रचनात्मक भारत की, कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी की, और ये समागम जो है हर प्रकार के एज ग्रुप के लोग, हर प्रकार के विदेश देश के लोग, हर प्रकार के तबके के लोग इसमें आते हैं और हमारे भारत में तो ये संस्कृति रही है। तो फॉरेन टूरिस्ट को हम अपनी संस्कृति का दर्शन, रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नागा अखाड़े का अपना अलग रिचुअल है और ये 33 है यहाँ पर। फिर कुछ लोग आते हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं क्योंकि एक मैनेजमेंट की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुंभ के सेलिब्रेशन को, यहाँ पर 45 करोड़ पीपल, कहने का मतलब है कि 4.5 बिलियन लोग आते हैं जो बहुत सारे देशों की आबादी से भी ज्यादा है, तो इसको कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी टेम्पररी सिटी है। 1.5 लाख तो टेंटी हैं आम कल्पवास करने वाले यात्री के, इसके अलावा 3000 टेंट हैं जो हम लग्जरी टेंट हैं जो हम टूरिस्ट को इसमें ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरह का ये बहुत बड़ा समागम है, तो मैनेजमेंट की दृष्टि से भी लोग इसको पढ़ने आते हैं। फोटोग्राफर्स विदेश से देश से आते हैं इसकी फोटोग्राफी करने की, सिनेमेटोग्राफी करने के लिए लोग आते हैं, प्लस लोग इसमें टूरिस्ट आइटिनरीज को देखते हैं कि भाई मैं अगर ऑलरेडी यूपी आया हुआ था या यूपी के आसपास कहीं आया हुआ था तो मैं इसको भी देख के जाऊं, बिकॉज ये बहुत बड़ा उत्सुकता का, कोतूहल का विषय है, बिकॉज इसमें एस्ट्रोनॉमी भी है। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है क्वांटम फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं, कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी की बात इसमें की जा रही है, बिकॉज आप देखो गैस्ट्रोनॉमी है यहाँ पर, वहां का लोकल खाना है, प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो कला संगम कर रहा है, तो देश के विभिन्न भागों से आपके क्राफ्ट्समैन आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे, विजुअल आर्टिस्ट आएंगे। मैंने देखा है जहां पर एग्जीबिशन एरिया होती है वहां पर बहुत सारे लोग जो है कुंभ के बहुत सारे दृश्यों को अपनी इमेजिनेशन से कैप्चर करते हैं, तो विदेशी वो भी देखना चाहते हैं, बहुत सारे विदेशी उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं जो आर्टिस्ट हैं। फिर उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो है म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होंगी, नृत्य होंगे, तो आपको भारत की झांकी एक ही मतलब 2 महीने के अंदर अगर आप वहां आते हैं किसी भी समय, तो आप पूरे भारत में मटेरियल, स्पिरिचुअल, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो हमारे सारे जो 4 पिलर्स हैं, उन सब को आप यहाँ पर एक उससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आप देखिए तो सही कि इतने पुराने काल से, क्योंकि आपने मेंशन करी कि समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन से लेके हम आज तक हम इस एक कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, और केवल आकाश में तारे नक्षत्र देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये प्रोग्राम कब शुरू होगा, किस धरती पे शुरू होगा। आई डोंट थिंक पूरे विश्व में इस प्रकार का इवेंट कहीं पर होता होगा जिसमें एंटिक्विटी भी है, जिसमें कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्निटी भी है। तो मैं तो सभी को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगी कि आप प्लीज आइए और देखिए, क्योंकि आपने अगर ये नहीं देखा तो आपने फिर कुछ नहीं देखा।
तो जैसा कि रवि पराशर जी अभी मुग्धा जी बात कर रही थी कि इस महाकुंभ के बहुत से आयाम हैं, यहाँ एक तरफ खगोल विज्ञान की उन्होंने बात की, अध्यात्म और आस्था का तो ये बहुत बड़ा केंद्र है ही, लेकिन रीति रिवाज, संस्कृति, विरासत, परंपरा और खगोल विज्ञान, प्राचीन ज्ञान, इनका भी एक संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से महाकुंभ के सांस्कृतिक महत्व पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, खासतौर पर महाकुंभ 2025 आज की पीढ़ी के लिए किस तरह से अहमियत रखता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि महाकुंभ के बारे में कि महाकुंभ वो पीढ़ियों का भी संगम है, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान है, समन्वय है, वो भी महाकुंभ में अगर जाते हैं तो उसका भी एक संगम दिखाई देता है। तो ज्ञान, परंपरा और जो रीति रिवाज है उनको किस तरह से ये महाकुंभ सांस्कृतिक रूप से एक करता है।
देखिए, आपने युवा पीढ़ी का प्रश्न उठाया, ये सही है कि आज के दौर में युवा पीढ़ी अपनी जो जड़ें हैं, सांस्कृतिक सनातन की जड़ें हैं, उनसे थोड़ी सी कटी फटी हो गई है। लेकिन इस तरह के आयोजन जब होते हैं और पूरे वैश्विक उमंग जोश के साथ होते हैं तो नई पीढ़ी को वहां पर, और मैं तो माता पिता से कहूंगा कि अपने युवा होते बच्चों को अवश्य ले जाएं, वहां पहुंचकर भारत का स्वरूप असली क्या है ये वाकई समझा जा सकता है। कुंभ एक ऐसी जगह है जहां संस्कृतियों का बड़े पैमाने पर आदान प्रदान होता है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अनेकता में एकता का भारतीय मूल मंत्र अगर समझना है तो कुंभ एक ऐसी जगह है जहां पर आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जहां की जो संस्कृति है, खान पान है, वेशभूषा है, परंपरा है, नृत्य कलाएं हैं, सांस्कृतिक कलाएं हैं, वो ये सब का अनुभव आप एक जगह पर जाकर ले सकते हैं। और दूसरी एक बात और है कि वहां जाकर, इस बार प्रयागराज में जाकर आप ये भी देख सकते हैं कि समाज के साथ साथ साधु संत और प्रशासन किस तरह से एक होकर के इतना बड़ा आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न कर पाते हैं, जिसमें दुनिया भर के भारतवंशी, विदेशी नागरिक, भारत के करोड़ों लोग, 40-45 करोड़ जिसको कहा जा रहा है, मुझे लगता है इससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धालु वहां न उमड़े। अनेकता में, जैसा मैंने कहा, एकता का भारतीय मूल मंत्र अगर समझना हो तो कुंभ में जाइए। विविधताओं में एकता का सामंजस्य यानी तालमेल किस तरह से होता है ये देखना है तो युवा पीढ़ी को कुंभ में जरूर ले जाना चाहिए। योग और ध्यान की बात अभी मुग्धा जी ने की, ये विशुद्ध सनातन परंपराएं हैं, इनका किस तरह से निष्ठापूर्वक, हठ पूर्वक, सहज रूप से किस तरह से प्रतिपालन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में होता है ये वहां साक्षात आपको देखने को मिल सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सनातन भारतीय मनीषा कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, और ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा बहि तेजस्विनावधीतमस्तु, और G20 का भी जिक्र किया, उसका जो ध्येय वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय सनातन मनीषा ही ऐसा बोलती है। तो इस हिसाब से देखें तो कुंभ जैसा आयोजन, दुर्लभ आयोजन, विरला आयोजन, दुर्लभ संयोग दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं देख सकते। और भारतीय जो ज्ञान, विज्ञान, ध्यान की जो सारी मुख्यधारा की परंपराएं हैं, वो सारी धाराएं आपको कुंभ में देखने को मिलती हैं। और एक और चीज कही जाती है वैज्ञानिक रूप से कि हर 12 साल में ये जो आयोजन होता है इसमें करोड़ों लोग एक जगह रुकते हैं, कुछ लोग स्नान के तुरंत बाद चले जाते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर अलग अलग दिनों तक कल्पवास करते हैं। तो कुंभ के उसी जल में स्नान करके हर्ड इम्यूनिटी वो कायम की जा सकती है जो अगले 12 वर्ष तक हमें निरोग करने में बल देती है।
अमित प्रकाश जी, आप इस महाकुंभ को अपने स्तर पर भी बड़ी व्यापक तरीके से कवर कर रहे हैं, तो इस बार दो बड़े पहलू इस बार महाकुंभ के जिस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो ग्रीन कुंभ, जिसकी अभी हमारे संवाददाता चर्चा कर रहे थे कि स्वच्छता और जो इसका हरित पक्ष है उस पर बहुत ध्यान दिया गया है जिससे कि सतत आयोजन हो इस महाकुंभ मेले का, और दूसरा तकनीकी प्रयोग जैसे कि डिजिटल महाकुंभ बनाने की ओर प्रयास करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल इस बार हुआ है, चैटबॉट है, और जिससे कि यात्रियों को और आने वाले लोगों को सहूलियत हो। तो इस दृष्टि से आपका क्या अनुभव रहा और क्यों आवश्यक है हम जब ऐसे बड़े आयोजन करते हैं, और किस तरह से ऐसे बड़े आयोजन में और महाकुंभ जैसे महोत्सव में इस तरह के चीजों के होने से और ज्यादा सहूलियत होती है और ज्यादा एक सकारात्मक प्रभाव लोगों पर इसका जाता है।
इस बार सरकार की तरफ से एक बड़ा विशेष आयोजन है, वैसे तो वहां देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले, अलग अलग देशों से आने वाले, या तो वो भारतवंशी हों या वो विदेशी हों, अगर वो भारत आ रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो उसी कुंभ में संगम के किनारे सरकार ने 12 ज्योतिर्लिंगों का एक भारत के मानचित्र के आकार में एक पार्क बनाया है। अगर उस पार्क में आप जाएंगे तो आप 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ देख सकते हैं। जहां तक डिजिटल कुंभ की आपने बात की, इस बार डिजिटल कुंभ के तहत और इस बार प्रयास सरकार की तरफ से और गृह मंत्रालय से लेके उत्तर प्रदेश सरकार से लेके हर मंत्रालय हर विभाग वहां एक बहुत ही यूनाइटेड एफर्ट है, एक बड़ा सिंक इन किया है सारे मंत्रालयों ने सारे विभागों ने कि इस बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि 45 करोड़ लोगों का एक स्थान पर आना, उन सारे व्यवस्थाओं को एक साथ देखना, और जिसमें मुग्धा जी बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, खासतौर पर ध्यान उन विदेशी पर्यटकों का ज्यादा रखना है जो पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था हो कि वो पैनिक में ना आए, वो ऐसी किसी चीज से घबराए ना कि बहुत भीड़ है तो हम कहां जाएं। तो मैप से लेके, लोगों के नेविगेशन से लेके, लोगों के रुकने की व्यवस्था से लेके, 5 अलग अलग स्टेशंस बनाने से लेके, ट्रेनें कहां से कितनी चलेंगी, अलग अलग विशेष ट्रेनें बनाने से लेके, ये सारी व्यवस्थाएं एक जगह सिंक हो रही हैं, और तभी नोडल ऑफिसर्स जो वहां बनाए गए हैं उस सारी व्यवस्थाओं को हर घंटे रिव्यू कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात अगर आ जाए तो वो जो चीजें हैं उसको ठीक किया जा सके। तो ये इस बार की व्यवस्था में ये 2-3 बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनका ध्यान रखा गया है।
मुग्धा जी, चर्चा का अंत हम आपकी टिप्पणी से ही करते हैं। इस बार का महाकुंभ 2025 क्या सकारात्मक असर पूरी दुनिया में छोड़कर जा सकता है अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें?
इसलिए भी ये साल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस वर्ष को इंडिया आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म डिक्लेयर किया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने रीच आउट किया है सभी को, चाहे वो यहाँ के एम्बेसडर्स हों, अभी मीटिंग करी है, हमारी लीडरशिप का डंका बजता है पूरे देश विदेश में। तो मुझे लगता है कि ये महाकुंभ जो है वो एक इस तरह का स्पिरिचुअल डंका बजाता है कि देखिए हम कितना बैलेंस्ड, हम क्योंकि बुद्धा का लैंड भी है तो हम कितना बैलेंस होके चलते हैं। मैंने हाल ही में सुना है कि नासिक में भी जो है इस तरह की तैयारी आर्किटेक्चरली उन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रभाव है क्योंकि जितना अच्छा मैनेजमेंट यहाँ होता है, फिर यहाँ से लेके गंगा सागर तक, फिर आपका पुष्कर से लेके जगन्नाथ तक, उन सब पे इस तरह का बढ़िया मैनेजमेंट कि हम क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि टूरिज्म में एक बहुत विषय आता है कि कैसे आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, थाईलैंड हो जाए, आपका जापान हो जाए, सब लोग क्राउड कंट्रोल की बात करें कि कैसे हम क्राउड को मैनेज करें, कैसे हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें, कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट करें। तो मुझे लगता है ये कुंभ जो है इन सब चीजों का भी आंसर दे रहा है। इसको देख के बहुत सारे लोगों को टूरिज्म कैसे कर सकते हैं, जहां पर भीड़ आती है किस तरह से उसको इतनी सुंदरता से 2 महीने तक खींचा जा सकता है, क्योंकि 2 महीने तक कोई भी आयोजन को करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सब सीख इससे हमें मिल सकती है, पूरे विश्व को एक एग्जाम्पल इंडिया जो है महाकुंभ के माध्यम से दे सकता है।
जहां त्रिवेणी का अद्भुत मिलन है, जहां वेणी माधव की दिव्य शक्ति का वास है, जहां सोमेश्वर का आशीर्वाद बरसता है, जहां ऋषि भारद्वाज ने तपस्या की, जहां भगवान नागराज वासुकी का विशेष स्थान है, कहा जाता है कि जहां अक्षय वट की अमरता का रहस्य छुपा हुआ है, जहां स्वयं ईश्वर की कृपा है, वहीं जो तीर्थ स्थान है प्रयागराज, इस तीर्थ स्थान पर इस बार महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। और हम अपेक्षा करते हैं कि जो 40 से 45 करोड़ की संख्या होने वाली है उसमें हमारे श्रोता भी अपनी उपस्थिति को शुमार करेंगे। और आज की इस चर्चा में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप तीनों विशेषज्ञों का, आपने चर्चा की और अपने महत्वपूर्ण विचार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सुनने वाले तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करते महाकुंभ 2025 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मुग्धा सिन्हा, भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ अमित प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।